कि इनके पिता इनके पिता का क्या है परिचय, तब क्या कहोगे, असुरा या सूरत ऊंचे कोटि कहना, पर असुर थे भक्त सूरत। हिरण्यकशिप उनके भाई हिरण्याक्ष भगवान के द्वारपाल थे, जैसा जानते हो पिछले कई महीनों से आप ये कथा सुनते आ रहे हो, आगे कई महीने भी सुनते जाओगे। भगवत की जो भक्तों की कथाएं हैं इन्हें आप दिन रात सुनोगे तो भी थकोगे नहीं। जैसे ध्रुव महाराज की कथा, राजन की कथा, भक्त प्रीत महाराज की कथा आपने कई बार सुनी है, पर हर बार सुनते हो बड़े ध्यान से, क्योंकि आध्यात्मिक विषय को जितना आप सुनो उतना ही कम है। जैसे कि भगवान के नामों का उच्चारण जितना लो उतना ही कम है, कि थोड़ी की अगर आप एक दिन 64 माला करोगे सगले दिन माला करने की इच्छा नहीं होगी। तो भगवान के भक्तों की और भगवान की लीला में हमें रुचि लेनी चाहिए। तो हिरण्यकश्यपु का आचरण तो देखा जाए असुर जैसे था, वो थे भगवान के पास, क्योंकि जब ब्रह्मा जी के पुत्र कुमार प्रवेश कर, जब उन्होंने प्रवेश किया वैकुंठ धाम में, पहले 6 द्वारों से वो निकल गए थे बड़े आराम से। जब 7वें द्वार में और पहले 6 द्वारों से जब वो गुजरे, उन्हें इतना आनंद आ रहा था, पहले थे माया वाली बाप के, तो इतना आनंद अनुभव कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो भगवान का दर्शन प्राप्त करने लगे थे। तो 7वें द्वार में क्या हुआ, उन्हें रोक दिया गया, जबकि क्रोधित होकर द्वारपाल ने कहा, क्रोधित कुमार ने कहा, तो मैं वैकुंठ धाम में सेवा करने की योग्य नहीं हो, और उन्होंने निर्णय कर लिया कि तुम्हें भौतिक जगत में पहुंचना चाहिए। जय विजय ने कहा जो सजा देनी है दो, पर केवल एक वर्ण चाहिए, क्या, हर स्थिति में हम किसका भगवान का स्मरण कर सकें, ये होनी चाहिए भक्ति इच्छा, चाहे सुख हो या दुख हो, स्वर्ग हो या नरक हो, हम ऐसी स्थिति में रहें कि हम सदा भगवान का क्या कर सकें, स्मरण कर सकें, ये होना चाहिए हमारा भाव। और जब कुमार ने देखा कि इन दो द्वारपालों का इतना गहरा संबंध है भगवान के साथ, क्योंकि जब भगवान ने ये वार्तालाप सुना तो बाहर आए देखने के लिए क्या हो रहा है, कि संग्राम आप इधर बैठे हो, व्यवहार सड़क में कोई जोर जोर से बात करेगा तो आपकी जिज्ञासा होगी क्या हो रहा है, क्या करना मिलती है। तो उसी प्रकार जब भगवान ने ये वार्तालाप सुना जय विजय का और हमारा जगह, तो देखने आए क्या क्या बीत रही है, क्या हो रहा है। और जब कुमारज ने देखा तो हमारे स्नेह के साथ इन द्वारपालों से चर्चा कर रहे हैं, तो उन्हें लगा कि उन्होंने गलती कर दी है, वो अपने श्राप वापस लेना चाहते थे। तो भगवान ने कहा कि मेरी इच्छा है कि तो मैंने श्राप दो, क्यों, भगवान ने भौतिक जगत में प्रकट होने वाले थे अपनी लीला निभाने के लिए, भगवान की इच्छा रखी है कि उनके भक्त असुरों के यहां कार्य करें। तो वैसे तो हम हिरण्यकशिपु को असुर मानते हैं, तो हृदय उनका भाव क्या था, भगवान का चिंतन और भगवान की सेवा। जय विजय को सजा मिली थी, भौतिक जगत में आकर 3 असुरों के रूप में जन्म किया था, पर तीनों में उनका भाव सदा क्या था, भगवान का स्मरण। और भगवान ने कहा बहुत ही जल्द इन लीला को निभाकर मेरे धाम वापस लौटा। तो हिरण्यकशिपु साधारण असुर नहीं थे, उनके पास आध्यात्मिक शक्ति भी थी जो साधारण असुरों के पास नहीं होती। उदाहरण के लिए जब वो पंडारा पर्वत में गए तपस्या का पालन करने के लिए, तो अपने पांव अंगूठों पर खड़े हुए थे, हाथ ऊपर आकाश की तरफ, पूरा शरीर चींटियों से भर गया था, चींटियों ने उनके सारे चमड़े को खा लिया था, केवल हड्डियां बच गई थी। इतनी चीज उन्होंने एक पहाड़ बना लिया था, इंग्लिश में कहते हैं एंजल, चींटियों का पहाड़। और चींटियों का पहाड़ बन गया था उनके शरीर में, जब भी उन्होंने किसी प्रकार की निराशा अनुभव नहीं की। आपके शरीर में कभी एक चींटी आ जाती है तो आपको लगता है इसको बगाओ, है कि सच बात है, एक चींटी आ जाती है। पर हिरण्यकश्यप के शरीर में लाखों लाखों चींटियां चल रही थी, और जब भी वो आकाश की तरफ हाथ उठाकर भगवान तपस्या कर रहे थे, और कितनी देर के लिए, देवताओं के 100 वर्षों के लिए, हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटों के बराबर है, तो देवताओं ने 100 वर्षों के लिए ये तपस्या की, और 100 वर्षों के लिए उन्होंने एक बूंद पानी के लिए किया। आप साथ में एक दिन रखते हुए चलते थे, एक दिन करते हो, एक दिन करके एक घर निकाल देते तो कुछ नहीं लेते। पर ये मेरा देवता के 100 वर्षों के लिए तपस्या की, और फिर ब्रह्मा जी के कहने पर तपस्या की आई। तो जाने का शिपो थे क्या ऊंचे कोटि के पर, क्योंकि वो भगवान की लीला को मधुर बनाने के लिए उन्होंने असुरों का आचरण किया, या उनके भाई हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई भगवान के हाथों से, वो विष्णु के शत्रु बन गए थे, तो उनकी भाई माता जी की पतिजे सब बड़े उदास थे, दुखी थे। तो हिरण्यकश्यप वहां गए, सिद्धांत बोलने लगे, उन्होंने ये शिक्षा दी क्या शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है, थोड़े समय के लिए हम सब इकट्ठे होते हैं और फिर जुदा हो जाते हैं। और उन्होंने आगे जाकर एक कथा सुनाई, एक समय एक राजा था जिनका नाम था महासी, राजा का की मृत्यु हो गई युद्ध में, जब युद्ध में मृत्यु हुई तो उनके मित्र रिश्तेदार पत्नियां सब बड़ी दुखी थी, और उन्होंने शरीर को शमशान घाट में ले जाने से रोक दिया, रोने लगी जोर जोर से उनकी पत्नियां। ये आवाज यामराज जी तक पहुंची, यामराज आए एक छोटे बच्चे का रूप रह करके, ये छोटे बच्चे लगभग हर जगह पहुंच जाते हैं, कोई रोकता नहीं। और यमुना जी ने कहा देखो इन मूर्ख औरतों को इतनी जोर से रोड़ी हैं, ये सोचकर कि उनका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो जाएगा, तो ये नहीं जानती कि वो सब मृत्यु के निकट जा रही है। और यमुना ने आगे कथा सुनाई, एक समय एक शिकारी था जो कि पहले अनफेंककर पशुओं को पक्षियों को आकर्षित करता था, और जब ये पक्षी वो अन्न खाने जाते थे तो वे क्या गोली से मार देता था। तो इसी प्रकार एक कुलंगा पक्षी थी जिसकी पत्नी फंस गई थी शिकारी के जाल में, उसका पति पछता रहा था, क्या था, मेरी पति मेरी आंखों के सामने है, तो शिकारी की जान में फंस गई है, अब मेरे बच्चों की कौन देखभाल करेगा। तो ये सोचते सोचते वो भी फंस गया शिकारी की जान में। तो यामा जी ने कथा सुनाई ये सब ये स्थापित करने के लिए कि जब कोई दुर्घटना बीतती है हम शोक करते हैं, रोते हैं, पर ये नहीं जानते कि हम सभी मृत्यु के निकट जा रहे हैं। तो इसे आप देख सकते हो कि हालांकि यहां कश्यपु सूर थे पर उसे नाम भी जानते थे, और जब समय आया तो उन्होंने बड़ा अच्छा से नाम भी सुना। उनके बेटे पलराज थे, राधे कश्यपु के चार बेटे थे जिनमें सबसे प्रसिद्ध कौन थे, सभी पूर्णनाद संभु कौमार कपिल मनु प्रहलो जनको भीष्म बलिर भाई ये सब के मनु। हमारे शास्त्रों के अनुसार 12 प्रसिद्ध महाजन हैं जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति खड़े होकर कहे मैं आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए योग्य हूं। सिद्धार्थ से धर्म के महाजन है। और प्रहलाद का क्या सौभाग्य था जब उनके पिता तपस्या कर रहे थे, प्रहलाद माता के घर में थे, देवताओं को भय था कि हिरण्यकश्यपु ने हमारा जीवन इतना कठिन बना दिया है, अगर एक और असुर बेटा पैदा हो जाए तो हम सबका जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। तो इंद्र देवता और दूसरे देवताओं ने ये निर्णय किया कि हमें प्रहलाद की मां को घीर कर ले जाना चाहिए, उनके पति तो गया हुआ मनारा पर्वत में तपस्या करने के लिए। और जैसे ही बच्चा पैदा होगा हम उसको मार देंगे, जैसे कहते ना जैसा बाप वैसा बेटा। पर जैसे घसीट कर ले जा रहे थे वहां पहुंच के नारद मुनि जिन्होंने कहा कि ये औरत के घर में सूर नहीं पर ऊंचे कोटि का स्थान था। नारद मुनि के कहने पर देवताओं ने उन्हें छोड़ा और नारद मुनि ने प्रहलाद की माता को शरण दी था अपने आश्रम में, ज्ञान की उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया। जो माता तो भूल गई पर बेटे ने ध्यान से हृदय में बिठा लिया था। इसीलिए प्रहलाद के पिता कभी ये नहीं समझ पाए कि मेरे बेटे को दिव्य ज्ञान कौन दे रहा है। उन्हें लगता था वैष्णवा वेश बदल कर आ रहे हैं मेरे बेटे को आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए। तो प्रहलाद शुरू से ही आत्मज्ञानी थे। कैसे? क्योंकि उन्होंने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जो वो माता के घर में थे। तो प्रहलाद महाराज ऊंचे कोटि के भक्त थे शुरू से। उन्होंने अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर पूरा वश किया था और वो दृढ़ थे भगवान की सेवा में। अगर आप देखो प्रहलाद महाराज को अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना, ये नहीं कि अगर आप भगवान के भक्त बन जाओ तो किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। आप 5 वर्ष जीवन देखो, प्रहलाद के जीवन को देखो, कितनी कठिन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, पर उनका पूरा विश्वास था भगवान की सेवा में। और जैसे कहा जाता है राखे कृष्ण भारे के मारे के कृष्णा, जैसे भगवान बचाना चाहे उन्हें कोई मार सकता है और जैसे भगवान मारना चाहे उन्हें कोई। और प्रहलाद महाराज का उदाहरण है पहाड़ों की चोटी से गिरने का, घेरू सांपों ने घेरा जब भी प्रहलाद की सुरक्षा किसने की परम भगवान ने। जब देवता परम भगवान के पास पहुंचे ये कहते हुए कि प्रहलाद कश्यपु ने हमारा जीवन रहना असंभव कर दिया रोगों से, भगवान ने कहा जैसे ही हरे का जुम्मन अपने प्रिय पुत्र के प्रति अपराध करेगा तो मैं पकड़ होकर उनका तो प्रहलाद का शुरू से ही आत्मज्ञानी थे, दिव्य ज्ञान था, उनके दृढ़ थे भगवान के सेवन में, मानव नीतियों पर उनका शुरू से ही पूरा वर्ष था। अपने साथियों को वो क्या कहते थे, खेलने कूदने का समय नहीं है, क्या करो, शुरू से ही अध्यात्म समय रुचि दो। प्रहलाद महाराज जी ने उस प्रसिद्ध श्लोक में कहा है, कमारा चल पड़े 5 साल की आयु से आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करना, क्या खनन कर देना चाहिए, क्यों आप पूछोगे, क्यों, क्या है आवश्यकता, क्या है इतनी जल्दी आध्यात्मिक ज्ञान अनुकूल करने की, तो इसका क्या है होता, कौन बताएगा, दुर्लभ मानव समझ, मनुष्य जीवन बड़ा तेज है, बड़ा दुर्लभ है, कठिनाई से प्राप्त होता है, इसलिए इसका अनुपयोग नहीं करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज के चरित्र के विषय में कहा गया है कि मानव इंद्रियों पर पूरा वश था और सबके प्रति दया की भावना थी, सबसे प्रति मित्रता का भाव था। जब उनके पिता ने उन्हें राजनीतिक शिक्षा देने का प्रयास किया, राजनीतिक शिक्षा क्या, ये मेरा बंधु है, ये तुम्हारा शत्रु है कि नहीं, यह राजनीतिक शिक्षा डिवाइन ओपिनियन में प्रहलाद ने क्या कहा, मेरा कोई शत्रु नहीं, सभी मेरे बंधु हैं, ये है वैष्णव का भाव। अगर कोई किसको कष्ट भी पहुंचा रहा है, अगर कोई किसी वैष्णव को कष्ट भी पहुंचा रहा है, वैष्णव ये नहीं सोचेगा ये मेरा शत्रु है, ये मेरी निंदा करता है, मेरी आलोचना करता है, मुझे कष्ट दे रहा, वैष्णव कह देता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें ये संदेश दिया, क्या सिद्धांत पिछले चेन रोड विधान हमारे न मना देना कभी न, खास करके इस कलयुग में इस श्लोक का बड़ा खास महत्व है। कलयुग में हम सब पर जो अहंकार है हमारे शरीर के वजन से भी ज्यादा खाली है, अगर आपके शरीर का वजन है 60 किलो, आपके अहंकार का वजन है 100 किलो, प्रेम और अहंकार के कारण हम भगवान की शरणागति होते, संतों की शिक्षा को स्वीकार नहीं करते। तो इस कलयुग में जैसे महाप्रभु ने कहा, सहनशील होना बहुत ही आवश्यक है और विनम्रता का भाव। तो प्रहलाद सबके मित्र थे, कोई उनका शत्रु नहीं, ये है भक्त का भाव, कोई हमारा शत्रु नहीं, सब हमारे मित्र हैं और सबके प्रति मित्रता का भाव। और जो उनके गुरु थे, जो उनके अध्यापक थे, सबको बड़ा आदर देते थे। हालांकि उनका जन्म हुआ था धनी खानदान में, उनके पिता क्या थे, उनके पिता थे राजा, तो हर प्रकार की सुविधा थी। प्रहलाद अत्यंत खूबसूरत थे और हर प्रकार की सुविधा थी, पर जब भी उनमें विनम्रता का भाव, ये नहीं मैं धनी पिता का पुत्र हूं, उन्हें विनम्रता का भाव। भक्त के मन में अगर कोई भक्त को सुविधा भी प्राप्त हो, भक्त यही सोचता है ये सुविधा भगवान की कृपा से प्राप्त हो रही है, मुझे इसका उपयोग करने दो भगवान की सेवा में। और वैष्णव के प्रति में कोई द्वेष का भाव नहीं था, ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या और द्वेष के कारण हमारी भक्ति नष्ट हो जाती है। आप चैतन्य चतुर्भुज में अमोघा ब्राह्मण की कथा पढ़ते हो, अमोघा जो कि सर्व बलचारियों के दमान थे, उनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष का महाप्रभु प्रकट थे। तो महाप्रभु सर्व बलचारियों के घर में प्रसाद खा रहे थे, अमोघा दीवारों से खानों को जोड़कर सुनने का प्रयास करता था क्या बात हो रही है वहां पर, वो कुछ गलत शब्द तो नहीं कह रहे, जल्द जल्द कुछ गलत शब्द कहें तो मैं उसका फायदा उठाऊंगा, उन्हें निश्चय हुए इसका। इतना तक कि एक दिन महाप्रभु प्रसाद खा रहे थे, लोग अंदर आ गए देखने के लिए, उन्होंने देखा अनेक प्रकार के सब्जियां मिठाई वगैरह, तो कहने लगे देखो किस प्रकार के सन्यासी हैं, सन्यास ग्रहण किया है और खाते हैं गृहस्थ से भी ज्यादा। महाप्रभु के भक्त बड़े प्रेम से बनाते थे, पर महाप्रभु खुद थोड़ा ही खाते। तो इस मोह को बाद में कौन रा की बीमारी हो गई, जब महाप्रभु को पता लगा वो पहुंचे वहां, महाप्रभु ने अपने हाथों को उनकी छाती में रखकर कहा जब तक तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष रहेगा भगवान उन्हें वास नहीं करेंगे। जैसे कि आपको गंदी जगह में बैठना अच्छा लगता है, जैसे कि अगर कोई कचरे का डब्बा हो, राम को कहें उचरने के पास बैठकर प्रणाम न करो, प्रसाद हो आप नहीं कहोगे ना। तो उसी प्रकार भगवान को गंदे हृदय में बैठना अच्छा नहीं लगता, ईर्ष्या द्वेष दूसरी अनर्थ जब तक हृदय में रहेंगे भगवान वहां विराजमान नहीं होंगे। महाप्रभु ने कहा ईर्ष्या द्वेष से बचो, तो भगवत ने कहा कि प्रहलाद के हृदय में किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष नहीं था। जब उनके पिता का वध हुआ नरसिंहदेव जी के हाथों से, प्रहलाद गए भगवान के पास, भगवान अत्यंत गुस्से में थे क्योंकि यानी कश्यपु ने प्रयास किया था उनके प्रिय भक्त का वध करने के लिए। तो हिरण प्रहलाद ने कहा हालांकि मेरे पिता असुर थे, मेरी एक ही प्रार्थना है आप इनका उद्धार कर लो। भगवान ने कहा कि भागने की आवश्यकता नहीं, क्यों प्रभाजी तात्पर्य में समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए तो 13 पीढ़ी तक सब लोग उद्धार हो जाता है। अगर आप मान लो धन कमाओ और अपने रिश्तेदारों को दो, थोड़ा बहुत एक लाभ होगा, फिर सब भूल जाएंगे। फिर आप भक्ति करो तो आप 13 पीढ़ी तक सबका उद्धार कर सकते हो। तो हालांकि उनके पिता ने हर रूप से प्रयास किया था प्रहलाद को कष्ट पहुंचाने के लिए, प्रहलाद क्या सोच रहे थे पिता का उद्धार। आप चेतने भगवत में हरिदास ठाकुर की कथा पढ़ते हो, हरिदास ठाकुर का जन्म जैसे आप जानते हो वह तो मुसलमान खानदान में, तो हरिदास ने हरि नाम को अपनाया था। तो हरिचंद जो मुसलमान उस समय भारत में, भारत के कई स्थानों में मुसलमानों का शासन शुरू हो गया था और बंगाल में भी मुसलमानों का शासन था, और मुसलमान राजा पति जी ने कहा तुम रोको हरि नाम का जाप करने के लिए, अल्लाह का नाम लो। जब भाईदास ने कहा किया तो उनको 22 बाजारों से घसीट कर ले गए, 22 बाजारों और उनको लगातार पीता जा रहा था। अक्सर अनुभव यह था जब इस प्रकार की सजा किसी और को दी जाती थी, दूसरे या तीसरे बाजार में पहुंचने तक आदमी मर जाता था। हरिदास को 22 बाजारों में नजीक कर लेकर वह हरिनाम करते गए और जो उनको पीट रहे थे उनके मन में चिंता थी हमारा क्या होगा। वो हरिदास क्या सोच रहे थे, हरिदास ये सोच रहे थे जो मुझे पीट रहे हैं अगर मैंने शरीर नहीं त्यागा तो उनको राजा जिंदा नहीं छोड़ेगा। हरिदास अपने स्वार्थ का नहीं सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे उनके स्वार्थ का जो उनको पीट रहे थे। और फिर हरिदास ने ऐसे व्यवहार किया कैसे उन्होंने अपना स्थान देना बंद कर दिया और ऐसे उनको लगा
अब तो हरिदास की मृत्यु हो गई,
तो उन्होंने उठाकर हरिदास को फेंक दिया गंगा ने। पहले राजा को सूचना दी, हरिदास का देहांत हो गया। राजा ने जानकारी को बुलाया, पूछा आप किस प्रकार का बढ़िया लेना चाहिए इसे। गांधी ने कहा ये इतना अपराधी व्यक्ति है, इसे मुसलमान नीति के अनुसार नहीं देना चाहिए, एक वर्ष को गंगा में हरिदास तैयार कर गंगा के पास जाकर फिर उन्होंने पेड़ के नीचे वजन शुरू कर दिया। जब राजा को सूचना मिली कि ये व्यक्ति जिसको उन्होंने सोचा था कि ये मर गया है जीवित है जाप कर रहा है, वो समझ गए हैं ये महान संत है। पर इस उदाहरण से आप क्या देखते हो, जो हरिदास को पीट रहे थे हरिदास उनकी चिंता उनके स्वार्थ की चिंता कर रहे थे। ये है वैष्णव का भाव। तो प्रहलाद का भी यही भाव था। प्रहलाद ने कभी ये नहीं सोचा कि इनको कष्ट पहुंचाओ। तो भक्ति मन ये भाव होना चाहिए सदा समाज को उधार, और अपने इंद्रियों को उन्होंने सदा वश में रखा था। तो प्रहलाद महाराज ऊंचे कोटि के भक्त थे आप कहोगे, तो ये तो संभव नहीं है हमारे लिए। ये उदाहरण सुनना भी बेकार है। यह था कुछ ऐसा आचरण हम क्यों नहीं रख सकते। सुनोगे तो प्रेरणा होगी कि हम भी कुछ प्रयास करें, ठीक है ना। तो अगर सुनोगे ही नहीं, प्रयास ही नहीं करोगे तो योग्यता कहां से आएगी। इसलिए जैसे भौतिक समाज में हम किसी व्यक्ति को हीरो बनाते हैं, जैसे कि जो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं वो सचिन तेंदुलकर को अपना हीरो मानते हैं ना। कोई फिल्मी कलाकार है, फिल्मी कलाकार को लोग हीरो मानते हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में हमारे हीरो कौन होने चाहिए, भगवान की शुद्ध भक्त प्रहलाद जैसे। हमें विचार करना चाहिए प्रहलाद महाराज की भक्ति इस प्रकार की थी तो हमें भी इस प्रकार का भक्त बनना चाहिए। हरिदास सागर का उदाहरण लेकर हमें भी ये भाव होना चाहिए। हरिदास सागर ने हरिनाम की शरण ली और माया देवी से भी बच गए, वैश्य से भी बच गए। तो अगर हम भी हरिनाम की शरण लेंगे तो हम भी माया देवी से बच सकेंगे। ये माया देवी तो सदा प्रयास करती है सबको आकर्षित करने के लिए, है कि नहीं। तो अगर आप हरिनाम की शरण लोगे तो जैसे हरिनाम ने हरिनाथ को बचाया हमें भी बचाएंगे। तो आप पढ़ रहे श्लोकों में कि युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि इन्होंने कष्ट क्यों नहीं, इन्होंने कष्ट क्यों दिया अपने बेटे प्रहलाद को। अगर इन्होंने कष्ट को प्रहलाद को इतना कष्ट नहीं देते और प्रहलाद इतने कष्ट नहीं देते तो क्या प्रहलाद हीरो बनते। प्रहलाद हीरो बन गए हैं क्योंकि उनको इतनी कष्ट की स्थिति में उनके पिता ने डाला है कि नहीं। अगर कोई कार्य सरलता से ही हो जाए तो इसके लिए आपको इनाम मिलता है नहीं। अगर आपको संघर्ष करना पड़े, प्रयास करना पड़े और फिर आपको कुछ सफलता प्राप्त हो तो फिर उसकी ज्यादा कदर होती है। सच है जो आप जैसे प्रचार के लिए जाते हो, अगर आप उस वातावरण में जाओ जहां व्यक्ति हमें गिदा दो हम जैसे शराब की दुकानों में शाम के समय जब देखो तो काफी भीड़ होती है। तो भक्तों की इच्छा होगी हाँ अगर किधर भी टेबल लगाए तो वहां इतनी भीड़ होनी चाहिए कि हम आउट ऑफ स्टॉक हो जाए 5 मिनट में। तो फिर भक्त कहेंगे, फिर हमारा उत्साह बढ़ेगा। कभी कभी भक्त प्रश्न पूछते हैं, हम प्रचार करने जाते हैं और कभी कभी काफी समय में कोई सफलता प्राप्त नहीं होती तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। नहीं, डिस्करेज नहीं होना, मान लीजिए भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु जी ने जब अपना स्वनारायण किया, क्या था अनुभव, एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद अड़ताल और सब भक्तों को बनाकर कहा आओ नित्यानंद और हरिदास और सब भक्तों को तुम सब घर घर जाकर लोगों को उपदेश दो क्या बोलो कृष्ण वाचक कृष्ण करो कृष्ण कृष्ण का नाम लो कृष्ण का भजन करो कृष्ण की शिक्षा को अपनाओ कृष्ण की शिक्षा कहाँ प्राप्त होती है ग्रंथों में जैसे भगवद गीता भगवत आगे उन्होंने कहा घर घर जाओ आपने शायद देखा होगा जो आपके ईसाई प्रचारक हैं वो घर घर जाते हैं ये भावना इंग्लिशर महाप्रभु की शिक्षा से मिली है महाप्रभु ने जब अपना प्रचार कांडों का आरंभ किया तो उन्होंने क्या कहा घर घर जाकर ये संदेश पहुंचाओ तो भक्तों को कहा लोगों को ये बताओ इसके अलावा और कुछ काम नहीं ये सबसे महत्वपूर्ण सेवा है और फिर लौट कर मुझे बताओ तुमने क्या प्रचार किया है जैसे कि प्रभुपाद जी जब पृथ्वी पर थे तो भक्तों को भेजते थे प्रचार के लिए जब प्रभुपाद जी ने इस कॉन्सन तक की शुरुआत की हिंदुस्तान में तो प्रभुपाद जी ने भक्तों को कहा था जाओ लाइफ नंबर बनाओ तो प्रभुपाद जी शाम को पूछते थे तो आज कितने मेंबर बने कोई दो तीन नंबर बनाकर आता था प्रभु जी बड़े खुश होते बाकी सिद्धांत जी जब अपने शिष्य को भेजते थे ग्रंथों का विदन करने के लिए वो लौटते थे दो पैसा चार पैसा इकट्ठा करके वो बड़े खुश होते थे तो प्रभुपाद जी पूछते प्रचार का क्या परिणाम हुआ और चेतन महाप्रभु ने क्या कहा नित्यानंद हरिदास को जाओ घर घर जाकर प्रचार करो और लौट कर मुझे बताओ क्या थी तुम्हारे प्रचार की क्या नतीजा और आपने सब देखा होगा खास करके जो भक्त मंगल आरती में आते हैं यहां भगवान को रिपोर्ट देते हैं आपकी दया से कल इतनी किताब में देखी इतने लोगों को जोड़ा इतने लोगों को प्रचार में जोड़ा है ये आरंभ कैसे हुआ है महाप्रभु की शिक्षा से क्योंकि महाप्रभु ने केवल ये नहीं कहा घर घर जाकर प्रचार करो महाप्रभु ने आगे ये भी कहा लौट कर मुझे बताओ क्या परिणाम हुआ है चेतन भगवत ने बड़ा स्पष्ट लिखा है तो महाप्रभु के और महाप्रभु ने कहा लोगों को ये बताओ यही है असली धन ये तुम्हारा कृष्ण प्राण भक्तों का प्राण क्या है कृष्ण सेवा यही है असली धन इसके अलावा और कोई धन नहीं चाहिए ये असली धन है भगवान का नाम तो जितने महाप्रभु जी के आदेश को कौन टाल सकता है कोई टाल सकता है जब महाप्रभु ने आदेश दिया सारे भक्तों ने कहा ठीक है महाप्रभु का आदेश है हमें पालन करना ही चाहिए सबने अपना प्रचार छोड़ कर दिया जब भगवान नित्यानंद और हरिदास की जोड़ी घर घर जा रही थी कई घरों में तो उनका बड़े आदर से स्वागत हुआ लोग कहते थे संत महात्मा आ गए हैं हमारे घर में हमारा उद्धार करने के लिए आइए आइए बैठिए बैठिए प्रसाद खाइए बोलिए हम क्या सेवा कर सकते हैं आदम भी जब प्रचार के लिए जाते हो कई तरह का स्वागत करते हैं आइए बैठिए पर कई स्थानों में वो जा रहे थे जहां लोग कहते थे हाँ जहां लोग कहते थे निमाई पंडित खुद तो पागल है वही को भी पागल बनाते जब चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना प्रचार का आंदोलन आरंभ किया समचेतन आंदोलन श्रीवाद अंगन में ये नहीं कि सबने साथ दिया जो मुसलमान थे उन्होंने तो कहा अगर ये निमाय के संतरे ना रोककर नहीं रोकोगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे और एक मुसलमान था उनमें जो बार बार काजी के पास जाकर शिकायत करता था रोको निमाय के यहां दौलत बोले तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे तो हमेशा की तीर से
हरे कृष्ण 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 हरे
निकलता था तो काजी ने कहा तो हमेशा आकर शिकायत करते हो रोको 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 निमाय के सर हरे नाम को और मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मैं देखता तुम हरे नाम कर रहे हो तो उस बुल्ला ने कहा ये बात सच है जब से मैंने हरे नाम सुना है निमाय के द्वारा क्या हरे नाम है जीत से निकलता ही हमारा हो गया हरे नाम हमारे जीत से निकले ही नहीं तो जब वहां लोगों ने अपना संतरण धारण किया मुसलमानों ने तो विरोध किया पर कई हिंदुओं ने भी विरोध किया हिंदुओं ने जाकर कहा काजी से जो खाते जो स्मार्ट ब्राह्मण थे ये निमाय का हमारे धर्म की बेइज्जती कर रहा है इसे तो धर्म ही बदल देगा ये तो लोगों को हरि नाम कीर्तन करा रहे हैं तो कई लोग इनका विरोध कर रहे थे और जब चेतन महाप्रभु ने अपना संविधान आंदोलन आरंभ के आशीर्वाद अंगन में तो सभा में केवल जो महाप्रभु के निकट के भक्त थे उन्हें ही ये सुविधा दी जा रही थी वो दर्शन लेने के एक ब्राह्मण था जो कि केवल दूध और फल पर पला था तो उसने बहुत निवेदन की श्रीवास से मुझे देखने दो महाप्रभु का कीर्तन श्रीवास का नहीं 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 मुझे इजाजत नहीं है मैं नहीं सुविधा नहीं दे सकता बहुत जिद की उसने श्रीवास ने कहा ठीक है दरवाजे के पीछे छुप कर देखे ना एक छोटा सा छेक था तो उस छेक से वो देख रहे थे महाप्रभु का दिव्य नाचना और गाना और फिर महाप्रभु ने एकदम नाचना गाना रोक दिया और कहा कोई ऐसा व्यक्ति है यहां जिसे नहीं होना चाहिए श्रीवास ने घबरा कर कहा एक ब्राह्मण है जो कि बड़ा तपस्वी है दूध और फल बड़े पीता है महाप्रभु के पास है वो भी महाप्रभु का केवल फूल और फूल दूध पर जीने से थोड़ी कोई पास बन जाता है अपनी जो भावना वही है महाप्रभु के पास है वो बात बन गए तो कई व्यक्ति थे जिन्हें अंदर नहीं आने दिया जाता था तो जब महाप्रभु ने संभोधन आरंभ किया तब नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे कई लोग कहते थे कि हम जब प्रयास कर रहे थे प्रवेश करने के लिए हमें रोक दिया था हमें अंदर आने नहीं दिया तो हमें अंदर आने नहीं दिया हम तुम्हें भी अंदर आने नहीं दिया और कई जगह लोग क्या कहते थे ये जासूस हैं ये चोर के प्रतिनिधि हैं जो बड़े चोर ने इनको सन्यासी के वस्त्र में हमारे घर में भेजा है देखने के लिए हमारे घर में क्या संपत्ति है फिर रात को लौटेंगे चोरी करने के जब नित्यानंद हरिदास सुनते थे इस प्रकार का लो क्या चोर आ गए तो हंसते थे तो आप जब प्रचार में जाते हो और कई बार कहा जाते मैं कह चुका हूं हिमाचल पंडित खुद तो पागल है अभी दूसरों को भी पागल बना रहा है तो आप जब प्रचार के लिए जाते हो आपका किस प्रकार से स्वागत होता है कई जगह लोग करते हैं स्वागत प्रेम से सच है कहते हैं आ गए स्वामी जी बोलिए क्या सेवा कर सकते हैं कितनी गीता स्पॉन्सर करें बोलो और कई जगह आप जाते हो क्या कहते हैं हर साल यहाँ हर किसी वाला आ जाते हैं वहां कोई काम धंधा नहीं है ना पर हम क्यों जाते हैं प्रचार के लिए हम चाहते हैं जैसे प्रहलाद महाराज की इच्छा थी सब सभी बने तो जब आप प्रचार करते हो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हर व्यक्ति हमारा साथ देगा और अगर आप और अगर कोई आपका अपराध भी कर ले तो आपको यही सोचना चाहिए जब नित्यनंदन हरिदास की बेइज्जती हो सकती है तो हमारी क्या स्थिति सच बात है। जब कोई नित्यनंदन हरिदास को कह सकते हैं क्या जासूस आ गए तो आपको कोई कहते हैं जासूस आ गए नहीं। नित्यनंदन हरिदास को क्या पागल हो गए ये माई की संगत में आकर जब इस प्रकार का आरोप लगा सकते हैं तो हमारी क्या स्थिति हमें सह लेना चाहिए। इसीलिए चीजें मालूम होता तो महाप्रभु के आदेश को पूरा करने के लिए नित्यानंद हरिदास घर घर जा रहे थे प्रचार करने के लिए। प्रचार के दौरान उन्होंने देखा दो भाई दो व्यक्ति सज्जन एक मिनट तो एक दूसरे का कला लगाते हैं दूसरे तो एक दूसरे के बाल खींच रहे हैं एक तरफ प्रेम से बात करते हैं दूसरी तरफ एक दूसरे को बुरी बुरी गालियां दे रहे हैं और दोनों नशा। तो नित्यानंद ने उसी इलाके के लोगों से पूछा कौन है ये लोग एक मिनट तो गले लगाते हैं एक मिनट बात खींचते हैं एक मिनट प्रेम से बात करते हैं और एक मिनट गाली देते हैं। तो लोगों ने कहा इन दो का जन्म हुआ था बड़े धनी ब्राह्मण खानदान में धनी खानदान के बच्चे हैं पर क्योंकि बचपन से ही बुरी संगत में गिर रहे थे शराब इत्यादि कल कामों में जुड़ गए थे इनके घरों ने उनको घर के बाहर कर दिया और ये हैं ब्राह्मण खानदान के पिछड़े हुए हैं क्या जिसमें हर प्रकार के गलत काम है कोई अपराध नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो लोगों के घरों को चला दिया लोगों को पीटते थे मारते थे दादे थे उस इलाके में आज की भाषा में बोलते हैं इधर का दादा है वो दादे मंगे थे उस इलाके में। तो नित्यानंद और हरिदास ने सोचा अगर किसी प्रकार से हम इनका उद्धार कर दें तो सब कहेंगे निमाई के प्रचार में जादू है। हरिदास और नित्यानंद को पता था कि महाप्रभु कौन है तो सदानंद सभा को नहीं पता था। तो इस भाव के साथ उन्होंने प्रयास किया उन्हें उपदेश देने के लिए उन्होंने कहा महाप्रभु ने यह संदेश भेजा है क्या बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण और जैसे ही इन्होंने सुना इन दो भाइयों ने उन्होंने क्रोधित होकर उन्हें भगा दिया। जब ये लोग भाग रहे थे कौन भाग रहे थे हरिदास और मित्र जो भाग रहे थे हरिदास ने कहा अभी मेरी जान बची है क्योंकि हरिदास ने जब पारे पाए हजारों से पीटा था बड़ी मुश्किल से बचे अब तो नित्यानंदा की बुरे राय के कारण होता हम फंस गए तो दोनों भाग रहे थे और ये जगहें मराए उनके पीछे भाग रहे थे क्योंकि वो इतनी शराब पीते थे उनका वजह भारी था और नित्यानंदा हरिदास को पकड़ नहीं पा। तो फिर आप जानते हैं कहते नित्यानंदा के प्रयास से महाप्रभु ने जब कहा फिर से जाऊं नित्यानंदा फिर पहुंचे इस संदेश के साथ और नताई ने पत्थर देकर सिर से माथे से खून बहने लगा और फिर कैसे महाप्रभु नित्यानंद की कृपा से उनका उद्धार नित्यानंद ने कहा जब मदाई दूसरा पत्थर फेंकने वाला था जगाई ने उन्हें रोक दिया था ये क्यों कर रहे हो महाप्रभु जगाई के बड़े आभारी थे क्योंकि उन्होंने मदाई को रोका पत्थर फेंकने से। तो चेत ने महाप्रभु जी के आंदोलन ने अनेक जगाई मदाइयों का उद्धार किया था। श्रील प्रभुपाद जी चेत ने महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार महाप्रभु का क्या आदेश था चारे दाखो कहो जिससे भी तुम मिलो से क्या कहो कृष्णा का उपदेश दो। तो श्री प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भगवान की जनादा जी ने यही आदेश दिया था प्रभुपाद को, ले जाओ इन चैतन्य के महाप्रभु के संदेशों का परिचय देश। पहली मुलाकात में ही भक्ति जी दादा जी पहचान गए कि यही है भगवान के प्रतिनिधि जो कि महाप्रभु के आदेश को भविष्यवाणी को पूरा करेगा। तो हमारे आचार्य ने प्रचार के कार्य पर बल दिया है और इसलिए क्योंकि भगवान ने ये सेवा पर सबसे ज्यादा महत्व दिया है। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, सबसे प्रिय भक्त कौन है, कौन है और उससे ज्यादा प्रिय ना हुआ है ना होगा। कई बार भक्त पूछते हैं, कोई शॉर्टकट नहीं है भक्ति में आगे बढ़ने का, हमें आदत है शॉर्टकट की। तो है मैं कहता हूं है शॉर्टकट, एक शॉर्टकट है, क्या है, आप प्रचारक बन जाओ। तो ये जो ग्रंथों के वितरण की सेवा जिसमें आप देखते हो इसको उनके केंद्र, हर केंद्र जुड़ता है प्रभुता के साथ, ये जो केंद्र है दूसरों के उद्धार के प्लान बना ने क्या कहा, हे भगवान मुझे मेरे उद्धार की चिंता नहीं है, मैं सीख गया हूं कि क्या होना जो जीवन का निर्णय है, मुझे चिंता किनकी है, जो व्यक्ति दुख की स्थिति को सुख कर सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो आज के वातावरण में जो हमारे विज्ञानी है क्या कर रहे हैं, ये सोचते हैं वो कष्टों को दूर कर देंगे, ये सोचते हैं समस्या को हल कर देंगे, पर वो कर सकते हैं क्या? विज्ञान ने इतनी दवाइयां बनाई हैं क्या सात प्रकार के कैंसर समाज में समाप्त हो गए हैं, नहीं उल्टा समाज में और भी अधिक कष्ट है। तो क्या है उपाय, लालनाथ कहते थे मेरी पहाड़ों में जाने की कोई रुचि नहीं, मेरी जंगल में जाने की कोई रुचि नहीं, मैं वहां जाना चाहता हूं कहां यहां की प्रचार हो सके। तो ये होना चाहिए भक्तों का भाव, लालनाथ के आदेश के अनुसार हम क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। लाल महाराज को इतनी कठिन परिस्थितियों का सामना क्यों करना पड़ा, क्योंकि उनका भाव था सेवा का और वो हर स्थिति में भगवान का प्रचार कर रहे थे। चारों तरफ प्रहलाद के चौकीदार थे, जब ये प्रहलाद ने प्रचार के कार्य पर भी दिया। तो प्रहलाद महाराज आत्मज्ञानी भक्त थे शुरू से, हर प्रकार का आध्यात्मिक बल था उनमें और उनकी चिंता केवल ये थी किस प्रकार लोगों का उद्धार होगा। तो प्रहलाद महाराज के आदेश के अनुसार हम सब प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं, भगवान के आदेश के अनुसार हम प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार हम प्रचार के कार्य में जुड़ते हैं और चैतन्य महाप्रभु जी के प्रतिनिधि महान आचार्य उनके आदेश के अनुसार ठाकुर भक्तिनाथ महा पहले महान आचार्य थे जिन्होंने शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की, ग्रंथों का प्रकाशन आरंभ किया, ग्रंथों का अनुवाद आरंभ किया, थोड़े समय में ही उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना कर दी थी अंग्रेजी भाषा में, बंगला और उड़िया में, और उन्होंने ग्रंथ लिखा था चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन के ऊपर जो कि उन्होंने विश्व के हर प्रसिद्ध महाविद्यालय को भेजा, एक ही नहीं लिख सकता। उनके प्रतिनिधि भक्ति सनातन सरस्वती ठाकुर, उन्होंने भी प्रचार के कार्य को इतना बल दिया, उन्होंने 3-4 प्रिंटिंग प्रेसेस भी बनाई और राधाकुंड में एक समय जब वो ब्रज मंडल कर रहे थे तो उस समय प्रभुपाद जी उन्हें मिले और उन्होंने एक मृदंगा की तस्वीर खींच कर कहा कि अगर भगवान तुम्हें सुविधा दें तो क्या करो, ग्रंथों को प्रकाशित करो और उनका क्या करो, दर्शन करो। और उन्होंने किसे वो क्या बुलाया, बृहद मृदंगा। और फिर भक्ति सिद्धांत जी ने यही आदेश प्रभुपाद जी को दिया। प्रभुपाद जी ने आगे यही आदेश अपने प्रतिनिधि को दिया। ये है गुरु परंपरा का तरीका। भगवान से शिक्षा आती है और जो गुरु हैं वो अपने आप को पोस्टमैन मानते हुए भगवान के संदेश को आगे पहुंचाते हैं। तो ये जो प्रचार की सेवा है ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। इस विषय में भागवतम के पांचवें स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं एक अंधा व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति जब अंधे व्यक्ति को देखता है गलत रास्ते में चलते हुए तो क्या करता है? आप किसी अंधे व्यक्ति को देख रहे हो सफेद लकड़ी कीम के साथ गलत रास्ते में जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? हाथ को पकड़कर उसे सीधे रास्ते में जोड़ दोगे। तो इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं कि जो वैष्णव भक्त हैं उन्हें अंधे व्यक्तियों को पकड़कर ठीक रास्ते में जोड़ना है। अंधे व्यक्ति का यह नहीं कि भौतिक दृष्टि से, भौतिक नेत्र हैं पर आध्यात्मिक दृष्टि से मानते हैं। जैसे ठाकुर भक्त जी एक प्रार्थना में कहते हैं जीव जागो गौरव चंद्र बोले। कहते हैं ये जीव आत्मा जागो। ठाकुर भक्त हम तो जागे हैं, आप क्यों कह रहे जागो? हम जागे हैं भौतिक दृष्टि से पर आध्यात्मिक दृष्टि से हम गहरी नींद में बहुत गहरी नींद में। तो संतों की संगत की आवश्यकता है हमें जगाने के लिए। आज के श्लोक के तात्पर्य में कहा गया है प्रभा जी पांचवें तीसरे स्कंद का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक का उपयोग करते हैं सातन प्रसंगम मम वीर संविदे। ये श्लोक का उच्चारण भगवान कपीर देव ने किया था। भगवान कपीर देव सती माता ने पूछा ये बताओ किस प्रकार लोगों का उद्धार होगा? पर देवहूति ने कहा, देवहूति को पता था मेरा बेटा भगवान का अवतार है। तो देवहूति ने पूछा कि मैं कैसे इन क्लेशों से छुटकारा प्राप्त कर सकती हूं? तो बेटे ने कहा भक्तों की संगत के द्वारा। तो साधु संगत की बहुत आवश्यकता है। ये संगत हम दो माध्यम से प्राप्त करते हैं। एक है भक्तों की संगत से, आप आते हो भक्तों की संगत में रहते हो तो ध्यान में गुस्सा बढ़ता है कि नहीं? अगर मान लो आप एकांत में किसी शहर में हो जहां कोई मंदिर नहीं कोई भक्त नहीं तो आप क्या भक्ति का पालन जब कठिन हो जाएगा? नहीं, कई बार सारे विश्व में भक्तों को मिलता हूं मैं तो कहने महाराज हमारे शहर में कोई भक्त नहीं कोई मंदिर नहीं, हम नौकरी बदलकर माना चाहते हैं आप भक्तों की संगत मिले। तो हम सब का अनुभव है क्या भक्तों की संगत से भक्ति का मार्ग ज्यादा सरल हो जाता है? सच अगर आप अकेले थे मान लो दिल्ली में और कोई भक्ति था कोई मंदिर नहीं था कोई नहीं तो जब कठिन होगा। तो भक्तों की संगत, तो ये संगत हम दो माध्यम से प्राप्त करते हैं। एक है भक्त भगवत और दूसरा है क्या ग्रंथ भगवत। तो हम जो ग्रंथों के वितरण की सेवा करते हैं ये इस माध्यम से ग्रंथ जो हैं लोगों को संगत दे रहे हैं। ग्रंथ भगवत तो जो ग्रंथों के वितरण की सेवा है इस पर इसलिए बल दिया गया है क्योंकि हर व्यक्ति अगर इन ग्रंथों को पढ़ेगा तो उसके द्वारा अपने जीवन को लाभ उठा सकेगा। ये नहीं कि हर व्यक्ति जो ग्रंथ लेता है जरूर पढ़ेगा, पर इन ग्रंथों में इतनी शक्ति है कि अगर आप इन ग्रंथों को घर में भी रखोगे सजाने के लिए केवल कुछ पता नहीं कब कोई पढ़ देगा। अनेक उदाहरण है हमारे समाज जहां लोगों ने 10-15 साल एक व्यक्ति को मैं जानता जो 20 साल पहले जिसने गीता ली थी कभी वो गीता उसने खोली थी 20 सालों के बाद कोई दुर्घटना हुई तो उसने खोली पढ़ना शुरू किया और फिर भक्त बन गए। 20 साल तक गीता खोली भी नहीं। तो कभी कभी जब आप प्रचार के कार्य में जुड़ते हो हमारे मन में भ्रम आता है हाँ कोई पढ़ रहा तो ही नहीं जबरदस्ती जा रहे थे। अगर लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं तो आज भक्तों की संख्या बढ़ती क्या? अगर आप वृंदावन गए थे कार्तिक में, आपने देखा होगा लगभग 10,000 से ज्यादा स्थान के भक्त थे इस परिक्रम में अलग अलग, और 20 साल पहले तो इतने भक्त नहीं थे, 10 साल पहले भी आपकी दिल्ली में पंजाबी बाद में नहीं थे। अगर भक्तों की संख्या बढ़ रही है उसका एक मूल कारण ये है कि प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वेतन बढ़ते जा रहा है, तो इन ग्रंथों को पढ़ रहे हैं और निर्णय कर रहे हैं हमें जीवन को सुधारना चाहिए। तो ये जो ग्रंथों के वेतन की सेवा है इसका एक ही भाव है, ये भाव भी कुछ न पकड़ना है, एक ही भाव है। भाव क्या है? लोगों का उद्धार करना। जैसे प्रहलाद महाराज, उनके मन में एक ही भाव था लोगों का उद्धार करना। प्रहलाद महाराज के मन में कभी भी अपने स्वार्थ की चिंता नहीं थी, उनके मन में सदा ये चिंता थी कैसे इन पतितों का उद्धार होगा। और महाप्रभु तो प्रकट हुए हैं पतितों का उद्धार करने के लिए। पति भगवान एक दबाव होता नरेंद्रनाथ ठाकुर कहते हैं आप अवतारित हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए, तो आप सब पतितों का उद्धार करना चाहते हो या नहीं? हाँ नहीं करना चाहते, आपने ऊंची आवाज से उत्तर नहीं दिया। सब पतियों का उद्धार करना चाहते हो या नहीं? आप कहोगे महाराज हम भी तो पति हैं तो हम दूसरों का उद्धार कह सकते हैं। तो हमें दोनों कार्य एक साथ करना है। जैसे मेडिकल स्टूडेंट वो मेडिसिन पढ़ाई भी कर रहे हैं, सामने हॉस्पिटल में मरीजों को ठीक करना भी शुरू कर देते हैं ना। आप अगर मेडिकल स्कूल में गए हो